एक दिन हरिया पूरब वाले खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहां लोगों का बड़ा जमघट था, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा के बाद दीमक का जमघट होता है। हरिया घबरा गया और घर लौटा। चंद्रा रेड्डी की जमीन के अतिरिक्त और किसानों को भी लगभग 50 एकड़ जमीन थी। उस जमीन में पेड़ पौधे, सांप और पंछी थे। हरिया उन पेड़ों की ओट में इधर उधर घूमता रहता था। वह दिन भर घर में पड़ा रहता और रात को खेतों में जाता। उस समय वहाँ खुदाई करने वाले मजदूर नहीं रहते थे। एक रात वहाँ जाकर हरिया इधर उधर देखने लगा। ये लोग पेड़ पौधों को खोद कर उखाड़ रहे थे। जो सांप नजर आता उसे मार डालते। प्रतिदिन एक दो पंछी मार कर खा जाते। खेतों में पंछियों के जो झुंड रहते थे सब इधर उधर बिखर गए। जिधर देखो सर्वनाश दिख पड़ता। खेत में यदि हरिया सोया हुआ पाया जाता तो शायद उसे भी सांप समझकर मार डाला जाता। इधर कुछ दिनों से हरिया मोटा हो चला था। अब उसे देखकर सांप का भ्रम नहीं होता था। बिजली के खंभे गाड़े गए। सुवन्ना पेठ में पग पग पर वृक्ष खड़े थे। हर बाजार में वृक्ष ही वृक्ष थे। नीम, पीपल, बड़, शीरीष आदि असंख्य वृक्ष गांव भर में दिख पड़ते थे। बिजली के तार लगाने का समय आया। एक वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया गया। दूसरे वृक्ष की बाहें कट गईं। एक और वृक्ष का तना आधी ऊंचाई तक कट गया। किसी और वृक्ष को सिर से उड़ा दिया गया। सारे वृक्ष उड़ते पंछियों के कंठरों द्वारा कराह उठे। परंतु निर्दय नियति ने पंछियों से कहा, जाओ गुंडेरू नदी की थाह में नीड़ बना लो, तुम्हें उन्नत स्थान की आवश्यकता नहीं। पंछियों ने पंख हिलाए, मुंह खोले। अंडों वाले नीड़ को यदि लाठी से छू दो तो पंछी तुम्हारे सिर पर चोंच मारेगा। परंतु शिकारी आकर एक एक नीड़ से पंछियों को पकड़ने लगे तो मादा पंछी झुंड बनाकर केवल आकाश में उड़ती रहेंगी। उनमें से एक भी पंछी शिकारी के सिर पर चोंच मारने नहीं आएगी। मादा पक्षियों को ज्ञात होता है कि शिकारी उन्हें ही पकड़ लेगा। ऐसा कौन प्राणी है जो विवशता के समय अपने आश्रय को छोड़ देने की आवश्यकता महसूस नहीं कर लेता। जब आधे वृक्ष कट गए तो शेष वृक्षों ने पंछियों से कहा, अब हम हारे। आज तक हम तुम्हें आश्रय देते आए हैं, लेकिन आज हमारे दुर्दिन आ गए हैं। अब क्यों हमारा आश्रय लेते हो? किसी और देश में जाओ जहाँ घास, लकड़ी और जल भरपूर मिल सके। और वृक्षों ने कहा, हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते। निर्दयी आकर हमें कुल्हाड़ी से काट देता है, पर हम भाग नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते। कुल्हाड़ी के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकते। तुम पंछियों का क्या? भगवान के दिए पंख हैं, जहाँ बन पड़े उड़ जाओ। कुछ पंछी अब भी इन्हीं वृक्षों पर रहना चाहते थे। उन्हें देखकर एक बूढ़े वृक्ष ने कहा, ये कोई नए वृक्ष आ रहे हैं? इन पर टहनियाँ नहीं हैं, फल नहीं हैं, पत्ते नहीं हैं। कौन जाने ये वृक्ष किस देश के हैं? क्या पता उस देश में सूर्य भी उदय होता है या नहीं। इन नए वृक्षों को बड़े होने के बाद भी दूसरी जगह लाकर रोपा जा सकता है। ऐसे ही वृक्ष अब सारे शहर में फैले हुए हैं। इनमें केवल तना है, दूसरा कोई अंग नहीं। इनका स्वभाव हम नहीं जानते। इन्हीं से कहते हैं कि तुम सारे पंखी यहाँ से उड़ जाओ। पता नहीं इस नए वृक्षों में कब टहनियाँ फूटेंगी। कौन जाने ये टहनियाँ कैसी होंगी। उन पर बैठकर शायद तुम मर भी जाओगे। सारे जंतुओं का एक सा स्वभाव होता है। जंगल काट डालो तो सिंह बचे खुचे चार वृक्षों की ओट में छिपा रहेगा। बड़ा मकान यदि जल जाए तो उसी जगह पर मनुष्य एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगेगा। कई वृक्षों को काटे जाने पर भी पंछी बची खुची टहनियों को छोड़कर नहीं जा पाते थे। ग्रीष्म समाप्त हुआ, बरसा गई। वर्षा आई। प्रतिवर्ष एक काला मेघ पश्चिमी घटाओं में, विंध्य पर्वतों में, हिमगिरि में और ब्रह्मदेश के पहाड़ों में विचरता हुआ और इस बात की सावधानी बरतता हुआ कि कहीं किसी पर्वत से टकराकर चकनाचूर न हो जाए, चला आता और आंध्र प्रांत पर बरसने वाले अपने साथियों से मिलकर सुवन्ना पेठ पहुँचता। वहाँ पहुँचकर वह अपने मित्र अर्थात एक ऊँचे वटवृक्ष की शाखाओं के झुरमुट पर बैठ जाता। उस वटमित्र से बातें करता। उस मेघ का नाम था विषन्निध और वृक्ष का नाम था आदिवट। वट महान बलशाली था। आए हुए मेघ रूपी मित्र के कंधों पर अपनी बाहें टिकाकर कहता, कितने लंबे समय के बाद आए हो। विषन्निध अपने मित्र के शरीर पर आनंद के आंसू बरसाता। पिछले बरस उसने आदिवट को गले लगाकर कहा था, मित्रवर, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी ने तुम पर कृपा की। मैं अनादि मेघ हूँ। चार शताब्दियों से मेरी और तुम्हारी मैत्री निरंतर चलती आई है, पर पता नहीं अगले बरस फिर हम मिलेंगे भी या नहीं। उस अनादि मेघ की चिंतातुर वाणी सुनते ही आदिवट मन में घबरा गया था। सोचा था, क्या बात है भला, इस अमृत मूर्ति के मुख से ऐसे अभद्र वचन क्यों निकले हैं। अब की बार विषण निधि नामक वही अनादि मेघ यथापूर्व आ पहुंचा, पर उसके मन में एक प्रकार की उदासी थी। उसके आते समय विंध्य पर्वत में एक शिकारी ने अपनी बंदूक से एक हरिणी का शिकार किया था। बंदूक की गोली विषण निधि के सीने के आर पार निकल गई। आज तक विषण निधि को बंदूक की गोली के बारे में मालूम न था। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में एक हरिणी ने उसे अपने सींगों से खरोंचा। ब्रह्मदेश के समुद्र में एक जहाज ने उसे अपने खंभे से खरोंचा। विषण निधि के मन में ये सारे अपशकुन हलचल मचा रहे थे। उसने आकर चारों ओर देखा, आदिवट वहां न था। विषण निधि को संदेह हुआ कि यह गांव शायद सुवर्णापेट नहीं है। उसने पास के 10-11 गांव छान मारे। सारे भौगोलिक संकेत सुवर्णापेट के ही थे। कोठी वहीं खड़ी थी, स्वामी का मंदिर वही था। वह देखो धर्माराव, वह देखो गणाचारी, वह देखो देवदासी, वह देखो हरिया, जो मोटा होकर ही पहचाना जाता है, निसंदेह यही सुवर्णापेट है। परंतु आदिवट कहाँ है? विषण निधि अश्रुमय हो उठा। उसे धीरज देने वाला कोई मित्र न था। अंत में वह एक बिजली के स्तंभ पर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह सूली पर लटक रहा है। सौभाग्य से इतने में एक हवा का झोंका आया और उसे उठा ले गया। विषण निधि उसी प्रकार उड़ता उड़ता अंत में किसी पर्वत के अग्रभाग पर जा पड़ा। वहाँ पानी की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आदिवट का जो परिणाम हुआ था वही विषण निधि का भी हुआ। नल का पानी आएगा या नहीं, यह तो राम जाने, परंतु बाजारों में जितने कुएं थे सब के सब ढक दिए गए। नलों के आने में एक बरस लग गया, अन्य शहरों में 2-3 बरस लगे थे। अतएव सरकार ने सुवर्णापेट की नगरपालिका को शाबाशी दी। सरकार का प्रशंसा पत्र देखकर नगरपालिका के एक सदस्य का चेहरा खिल उठा, दूसरे सदस्य की भुजाएं थिरक उठीं, एक और सदस्य ने अपने आप को महापुरुष समझा। एक एक बाजार में एक एक नल लगवाया गया। जब बाजारों में कुएं थे तब गरीब लोग अपने घड़े आप लाकर पानी ले जाया करते थे। 4 घड़े पानी से सारा दिन काम चल जाता था, पर आज सवेरा होते ही प्रत्येक नल के पास 100-100 घड़े आ जमते थे। जो पहले आता उसे पहले पानी भरने दिया जाता। कुछ लोग सवेरा होने से पहले अपना घड़ा नल के नीचे रखकर चले जाते थे। कॉलेज के विद्यार्थी, होटलों में सवेरे सवेरे जलपान के लिए जाने वाले, मोटर बस वाले मुंह धोकर नलों के इर्द गिर्द गंदगी कर छोड़ते थे। ब्राह्मणों के बाजारों में तथा कुछ स्थानों पर घरों के भीतर के कुएं अभी तक बंद नहीं किए गए थे। कुओं का पानी नहर के पानी की तरह मीठा नहीं होता, इसलिए गांव के सारे लोग नल के पानी पर टूट पड़े। उस पानी की कीमत बढ़ गई। घरों में नल लगवाने का अलग खर्च बैठता था, उस पर मीटर लगता था। मीटर के निरीक्षक के हाथ में कुछ थमा देने की चतुराई इस व्यक्ति में न होती, उस बेचारे पर अधिक टैक्स लगता। जो धनवान अपने घरों में नल लगवाते थे उन्हें कोई कठिनाई न थी, परंतु जो गरीब जनता बाजारी नलों से पानी लेने के परिवश थी उसकी परेशानी का ठिकाना न था। नलों के पास घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। लोग प्रस्ताव पास करने लगे। प्रस्तावों को अफसरों के पास पहुंचाया गया। अफसर ने कहा, हम आपकी ही बात सोच रहे हैं, अब कई प्रकार के और खर्च आ पड़े हैं, फिर देखा जाएगा। एक समय वह था जब सुवर्णापेट के किसी भी घर में पीने के पानी की कमी न थी। आज किसी भी घर में जाकर पानी मांगे तो जवाब मिलता है, बाजार में नल मौजूद हैं, सो हमें क्यों पानी के लिए तंग करते हो, एक एक घड़ा भरते भरते हमारी आयु पूरी हो रही है, भगवान के लिए चले जाओ। बिजली आई, एक नलों के लिए और एक बिजली के लिए। इस प्रकार 2 इंजीनियर नियुक्त किए गए। उनका वेतन 500 रुपये मासिक था। दोनों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये वेतन के रूप में देने पड़ते थे। यह रकम सुवर्णापेट की जनता से मांगी जा रही थी। बिजली के आने से पहले बाजारों में कंदील जलाने का काम धोबियों के जिम्मे था। 25 धोबी काम करते थे और उनका वेतन 10 रुपये महीना था। इंजीनियर के वेतन का आधा उन धोबियों पर खर्च होता था। अब उन्हें निकाल दिया गया। बेचारे धोबी कपड़े धोने के योग्य भी न समझे गए। निम्न जाति वाले गरीबों का रोजगार छीनकर उच्च कुल वाले धनवानों को मुलाजमतें मिलने लगीं। एक दिन चंद्रा रेड्डी बाजार से गुजर रहा था। बिजली के बल्ब जल रहे थे। इतने में रेड्डी की अंगूठी उंगली से फिसल कर गिर गई। बिजली की रोशनी में चंद्रा रेड्डी ने बहुत ढूंढा, पर अंगूठी का कहीं पता न चला। लाखों के खर्च से लगाए हुए बिजली के बल्ब मशालों की तरह जल रहे थे। बेचारा चंद्रा रेड्डी किस मुँह से लालटेन मंगवाता। अंगूठी नजर नहीं आई, बिजली के सारे बल्ब लाल पड़ गए थे। कंजूसी करके कम वोल्टेज वाले बल्ब मंगाए गए थे। उनके प्रकाश में एक प्रकार की लाली आ गई थी। बिजली के साथ कुछ ऐसा दुराभिमान भी आ गया था कि चंद्रा रेड्डी को इधर उधर अपनी अंगूठी ढूंढना अपमानजनक लगा। अंत में चंद्रा रेड्डी विवश होकर चला गया। दूसरे दिन रास्ते चलते एक धनवान व्यक्ति ने अंगूठी देखी और उसे लेकर चलते बना। क्यों न वह अंगूठी किसी गरीब के हाथ लगी। बेचारे कई कंगाल ऐसे होते हैं जो बाजारों की मिट्टी जमा करके उसकी छानबीन करते रहते हैं। बाजार में चलते हुए एक एक दीवार के पास कोई पड़ी हुई चीज़ ढूंढते रहते हैं। वह अंगूठी ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिली, किसी भंगी को क्यों नहीं मिली, पर वह गरीबों को क्यों मिलती। अनायास अंगूठियों का हाथ आना उनके भाग में बदा होता तो वे फिर गरीब ही क्यों रहते। बाजारों में बिजली के बल्ब जलने लगे, पर उनके घरों में अंधियारा ही छाया रहा। लाखों की संख्या में कीड़े आ आकर आसपास मंडराने लगे। लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया, नाटक देखना मुश्किल हो गया। क्या ये सब कीड़े बल्बों से पैदा होते हैं? पहले तो इनका कहीं पता न था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजली के प्रकाश में वे पहली बार दिखाई दे रहे हैं। धनवानों ने अपने घरों में बिजली के बल्ब लगवाए। कैसा ठाठ था उन बल्बों का। गरीबों के घर में पदार्पण करने से बिजली ने साफ इनकार कर दिया। घरों की बात तो दूर, बिजली गरीबों की गलियों में भी नहीं जाना चाहती थी। गरीबों के घर विवर्ण होकर बिजली के बल्बों की ओर देखते रह गए। उधर बिजली चमक रही थी और इधर गरीबों के पेट में आग धधक रही थी। वे भूखों मर रहे थे। गांव के बाहर एक मठ का खंडहर था। उस पर छप्पर नहीं था, केवल नंगी दीवारें खड़ी थीं। उन दीवारों के पास गरीबों के कुछ घर थे। घर क्या थे, केवल चूल्हे थे। चूल्हे का अर्थ था तीन पत्थर। जहाँ वे तीन पत्थर रखे हों वहीं चूल्हा और वहीं घर। उस घर को कभी दीवार का आसरा मिलता तो कभी वह निरावलम्ब भी रह जाता। नगरपालिका केवल उन नागरिकों का पालन करती है जो टैक्स दे सकते हैं। वहाँ केवल जायदाद वालों का पालन किया जाता है। यह पालन भी कैसा, लोगों से टैक्स वसूल किए जाते हैं और उस रकम में से कई देवताओं को नैवेद्य चढ़ाने के बाद लोगों को हथेली में जन्नत दिखाई जाती है। एक बालक के हाथ में रुपये का नोट थमा दीजिए, वह उसे फेंक देगा और पैसा मांगेगा। उसके लिए रुपये का कोई मोल नहीं। वह समझता है कि एक पैसे में 11 रुपये आते हैं। फिर भी बालक को अगर अनजान कहो तो वह बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार नगरपालिका ने लोगों से कहा, मैंने तुम्हें उजाला दिया, पानी दिया। इस पर धनवान ने जवाब दिया, दूत तुमने क्या दिया? मैंने पैसा खर्च करके सब कुछ खरीद लिया है। ये बातें सुनकर निर्धन ने कहा, आज तक पैसा देकर पानी और उजाला खरीदने की प्रथा न थी। दुर्भाग्य से आज पवित्र जल एवं पवित्र प्रकाश दोनों की स्थिति वेश्याओं से भी गई गुजरी है। बाजार में एक अंधे को एक लंगड़ा अपने साथ लिए जा रहा था। लंगड़े ने कहा, हमारे गांव में बिजली के बल्ब लगे हैं। अंधे ने पूछा, तो फिर रात में भी सूर्य जैसा प्रकाश रहता होगा? लंगड़े ने जवाब दिया, उससे भी अधिक। अंधे ने पूछा, और दिन को? लंगड़े ने कहा, दिन को बल्ब की क्या आवश्यकता है? अंधा बोला, मुझे एक बल्ब के पास ले चलो। लंगड़ा अंधे को एक चौराहे पर बिजली के खंभे के पास ले गया। अंधे ने पूछा, उजाला कहाँ है? लंगड़ा बोला, तुम तो अंधे हो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? अंधा कहने लगा, मुझे नहीं दिखाई देगा? आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, अवश्य दिखाई देना चाहिए। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें इस बिजली के कारण कोई कमी बेशी नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि यह सच्चा प्रकाश नहीं है। उसकी बातें सुनकर वहाँ सब लोग हंस पड़े। अंधा मन ही मन सोच रहा था, पागल मैं हूँ या ये लोग। बिजली के तारों के स्पर्श से प्रतिदिन 4-5 पंछी मर रहे थे। उस बूढ़े वृक्ष की बात सच निकली। गांव भर में बिजली का प्रकाश था, पर एक बार वह बुझ जाता तो अंधियारे ऐसे लगते मानो प्राण छोड़े हुए मृत शरीर हों।